प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 29 अगस्त 2017 के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैंने फैसला किया है कि मैं एक ऐसे विषय पर बात करूं जिसके बारे में लगातार युवाओं के खासकर मेरे पास मेल आ रहे हैं, और जब कल मुझे एक ऐसा मेल मिला तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस विषय पर बात करना ही चाहिए। और यह मेल जिस स्टूडेंट ने लिखा था, मैं उसका नाम बताना जरूरी नहीं समझता, लेकिन जो बात उन्होंने लिखी थी वह अपने आप में बहुत मौजू है, बहुत सही है। और सच पूछिए तो उनकी जो अपनी चिंता है, या यूं कह ली कि उनकी जो अपनी समस्या है, मैं उसका भी भरपूर रूप से स्वागत करता हूं और साथ ही साथ सम्मान भी करता हूं। मित्रों, उन्होंने ईमेल में लिखा कि सर, जब मैं कुछ भी गलत होते हुए देखता हूं तो मैं बिल्कुल आवेश में आ जाता हूं, बिल्कुल उत्तेजना में आ जाता हूं और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये उनकी मूल समस्या है, क्योंकि देखिए, एक बार आप आवेश में आ गए, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो बट नेचुरल है कि आप कुछ न कुछ एक्शन करेंगे, आप एक्शन में आएंगे। अब एक्शन में कुछ भी हो सकता है, आप बहस कर सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, बात आगे बढ़े तो हो सकता है कि नौबत हाथापाई तक आ जाए, गाली गलौज तक, मतलब कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हम उत्तेजित होते हैं, सीधी सी बात है कि हम क्रोध में हैं और हम अपना संतुलन खो चुके हैं, यह तो ये मानसिक स्थिति है। और जब हम अपना संतुलन खो देते हैं तो सच पूछे तो लगाम हमारे हाथ से छूट चुकी होती है, फिर मित्रों कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हम कर सकते हैं। और जब हम कुछ करेंगे तो स्वाभाविक रूप से सामने वाला चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारी उत्तेजना उसकी उत्तेजना को भी जन्म देगी। जैसे जैसे हम ज्यादा उत्तेजित होंगे वैसे वैसे वो और ज्यादा उत्तेजित होगा। जैसे आप कह लीजिए कि जैसे आग में आप पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहे हैं, सामने वाला जैसे जैसे ज्यादा उत्तेजित होगा हमारी उत्तेजना और ज्यादा बढ़ती जाएगी। मतलब कुल मिलाकर यह कि दोनों असंतुलन की स्थिति में है और दोनों एक दूसरे की आग में पेट्रोल का छिड़काव कर रहे हैं और आग लगातार भड़क रही है। और मित्रों, निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ी समस्या है और खासकर युवाओं से जुड़ी हुई समस्या तो है ही, क्योंकि जो युवा हैं नो डाउट कि उनमें एक तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, दूसरी बात कि वो काफी कुछ सीमा तक आदर्शों में जीते हैं। देखिए, बचपन होता है, माता पिता, परिवार, समाज के द्वारा मिले हुए संस्कार होते हैं, शिक्षा के माहौल में भी कहीं न कहीं वो आदर्श पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक आदर्श धारणा जीवन के बारे में बनाकर चलते भी हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, मतलब अपनी सीमाओं को तोड़ करके जैसे ही वो समाज के यथार्थ में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वह आदर्श उस तरीके से मिलता नहीं है, वह दिखाई नहीं देता है, राइट? देख रहे हैं कि जगह जगह उस आदर्श की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो छोटे मोटे मैनर्स को लेकर के ही बात क्यों ना हो। तो ऐसी स्थिति में उनका एक तरीके से यूं कह लीजिए कि मोह भंग हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा स्वप्न देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत स्वप्न देख रहे हैं, और कोई अचानक आपको जगा दे और आपकी वो जो सारी दिमागी खूबसूरती थी वो छूमंतर हो जाए, लगभग वही स्थिति होती है। और ऐसे में उनका उत्तेजित हो जाना मुझे लगता है कि काफी कुछ स्वाभाविक भी है। तो मित्रों, ये समस्या जो है वो बहुत ही सच पूछिए कि न केवल स्वाभाविक ही समस्या है बल्कि बहुत जायज भी समस्या है। जायज इस मायने में मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर कहीं गलत हो रहा है और अगर हम नहीं बोलेंगे तो गलत होता चला जाएगा, फिर सही होने की संभावनाएं रह कहां जाएंगी। तो हमें यह भी लगता है कि नहीं, जहां गलत हो रहा हो वहां हम थोड़ा सा उसे रोकने की कोशिश करें, ठीक है, वो चीजें खत्म नहीं होंगी लेकिन प्रतिबंधित तो जरूर होंगी। क्योंकि जो समाज इस तरह से अपने को टोटली विड्रॉ कर लेता है, यानी कि कुछ भी गलत हो रहा है और समाज के लोग उसकी अनदेखी कर रहे हैं, या हम यह मानकर चलने लगते हैं यार कि हमारे साथ थोड़ी हो रहा है, ये तो उसके साथ हो रहा है, तो होने तो हमें क्या पड़ी है। जो धीरे धीरे काफी चीजें बढ़ती चली जा रही, इस तरह की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है और महानगरों में तो बहुत ज्यादा होने लगी है। और आप सब अखबारों में पढ़ते भी होंगे कि साहब कैसे सरेआम बदमाशी की गई लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और ऐसे में जो बदमाशियां करने वाले हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, उनका हौसला बढ़ता है। तो डेफिनेटली इस तरह का निष्क्रिय समाज एक तरीके से आप यूं कह लीजिए कि अधः पतन को ही प्राप्त होता है। तो उस लिहाज से तो ये बहुत सही है कि हम हस्तक्षेप करें। अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो एक तरह से यूं कह लीजिए कि हम कहीं ना कहीं अन्याय के ही पक्ष में हैं, और ये बात कहावत मुहावरों के तौर पर कही भी जाती है कि अगर आप चुप हैं इसका मतलब है कि आप अन्याय का पक्ष ले रहे हैं। और दूसरी बात एक ये भी होती है मित्रों की, जैसे मान लीजिए कि मोहल्ले में आग लगी है, ठीक है, मेरा घर उससे दूर है, लेकिन अगर मैं उस आग को बुझाने में अपना योगदान नहीं दूंगा तो वो आग फैलेगी और फैलते फैलते धीरे धीरे मेरे घर को भी अपने जद में ले लेगी, मेरे घर को भी खत्म कर देगी। आज मैं बच सकता हूं, कल बच सकता हूं, परसों बच सकता हूं, लेकिन मैं कब तक बचूंगा, वो मुझ तक पहुंचेगी ही। इसीलिए फ्रेंड्स एक जो बात कही जाती है प्रतिरोध की, कि सामाजिक प्रतिरोध अन्याय के खिलाफ होना ही चाहिए। तो फिर सीधी सी बात है कि क्या जिस स्टूडेंट की समस्या है उसे मैं सीधे सीधे ये कह दूं कि नहीं, तुम जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो और तुम्हें इसी तरह से करते रहना चाहिए। इससे तो यही ध्वनित हो रहा है, यही अर्थ निकल रहा है। नहीं मित्रों, अगर यही मुझे कहना होता तो फिर बात बहुत सामान्य सी थी, मैं कहकर खत्म कर देता, लेकिन बात यह नहीं है, बात इससे बहुत आगे की है। मैंने तो अभी जो बात कही है वो एक सामान्य बात कही है, और आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें मैंने सामाजिक प्रतिरोध शब्द का प्रयोग किया है। सामाजिक प्रतिरोध का क्या मतलब है? सामाजिक प्रतिरोध का मतलब है कि जब कई लोग, ढेर सारे लोग मिलकर किसी का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि जब समूह हो जाता है तो उस समूह की ताकत के सामने, उसके प्रतिरोध के सामने, जो सामने कुछ थोड़े से लोग हैं जो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सहम जाते हैं। वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ भी जाते हैं कि अगर हमने अपनी गतिविधियां जारी रखी तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो एक साथ खड़े हुए हैं। और आप देखिए कि दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई हैं, मतलब सत्ताओं के विरुद्ध क्रांतियां हुई, और आप कल्पना करके देखिए कि सत्ता के विरुद्ध क्रांति कोई आसान चीज नहीं है, कि आप राजा के खिलाफ खड़े हो जाएं, उस राजा के खिलाफ जिसके पास सेना है, जिसके पास लोग हैं, सारे के सारे साधन हैं, कानून की किताब जिसकी अपनी बनाई हुई है, जिसके हाथ में सारी शक्तियां हैं, उसके सामने लोग खड़े हुए, प्रतिरोध में खड़े हुए, और उन्हें सफलता मिली, क्योंकि राजा को यह लग गया कि अब यह जो प्रतिरोध है यह व्यक्तिगत प्रतिरोध नहीं रह गया है, या केवल कुछ गिने चुने लोगों का प्रतिरोध नहीं है, बल्कि यह तो पूरे के पूरे समाज का प्रतिरोध हो गया, पूरे के पूरे राष्ट्र का प्रतिरोध हो गया, पूरे के पूरे एक समुदाय का प्रतिरोध हो गया है। तो उसमें एक जबरदस्त ताकत होती है। मित्रों, ये जो मैंने अभी आपको इतनी विस्तार से जो पृष्ठभूमि दी है उसके पीछे देखिए कारण क्या है। मैंने अभी जो भी बातें की हैं वो समूह की बात की है, और यहां जो समस्या है वो व्यक्ति की समस्या है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये जो युवा है जिसने मुझे मेल लिखा है, और इससे पहले भी मेल आए हैं, ये इकलौता है, और कहीं भी अन्याय होते देखकर ये उत्तेजित हो जाता है, राइट। मित्रों, अब दो चीजें होती हैं, देखिए, एक होता है आदर्श और दूसरा होता है व्यवहार, या यूं कह लीजिए यथार्थ। नो डाउट कि जो उत्तेजना का कारण हो सकता है वो एक आदर्श हो सकता है, कि मैं जिन आदर्शों को लेकर के चल रहा था, जैसे मान लीजिए कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, उनकी रक्षा की जानी चाहिए, ये मेरे दिमाग में एक आदर्श है, और मैंने देखा कि कोई महिला को छेड़ रहा है, तो मेरे उस आदर्श को धक्का पहुंचा और मैंने उस आदर्श की रक्षा करने के लिए फिर अपना कोई भी स्टेप उठाया, यानी कि मैं उत्तेजित हो गया और फिर आगे बात बढ़ गई। तो आदर्श था कि महिला के सम्मान किया जाना चाहिए, उसकी रक्षा की जानी चाहिए, और उसे मैंने टूटते हुए देखा कि सामने वाला व्यक्ति तो उसके बिल्कुल विरुद्ध काम कर रहा है, राइट, गलत नहीं है। लेकिन दूसरी स्थिति क्या होती है? दूसरी स्थिति वहां होती है मित्रों की, जब हम व्यवहार की बात करते हैं, व्यवहार की बात इस रूप में कि मेरा यह जो प्रतिरोध है, यह प्रतिरोध किस सीमा तक यथार्थ में तब्दील हो सकता है, यानी कि मैं जो प्रतिरोध कर रहा हूं यह प्रतिरोध कितना सार्थक हो सकता है, कामयाब हो सकता है, मतलब इसके परिणाम कितने सकारात्मक हो सकते हैं, इसके बारे में कोई बना बनाया फार्मूला नहीं है कि ऐसी स्थितियां देखिए तो आपको परिणाम सकारात्मक मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी स्थिति में हम करते क्या है मित्रों? ऐसी स्थिति में हम जो करते हैं, या जो व्यावहारिक पक्ष इसका होगा, वो ये होगा कि अपनी उत्तेजना को हमें नियंत्रित करना होगा, अब देखिए मैं कि उत्तेजना को नियंत्रित करने की बात कर रहा हूं। उत्तेजना को नियंत्रित करने का मतलब है कि हमें अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखना होगा। हमारे दिमाग में कुछ ऐसी गलतफहमियां बनी हुई हैं कि जो प्रतिरोध है राइट, या जो विरोध है, वो बिना उत्तेजना के नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। एक यूं कह लीजिए, एक विनम्र न शब्द हम इस्तेमाल करें तो आप यूं कह सकते हैं कि एक असंतुलित प्रतिरोध भी होता है। होता क्या है कि जब हम संतुलित प्रतिरोध करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। देखिए, हम प्रतिरोध कर रहे हैं लेकिन जब वो संतुलन में है तो उसके दो फायदे होंगे। नंबर वन, पहला फायदा यह होगा कि सामने वाला जिसका हम विरोध कर रहे हैं वो तुरंत बहुत ज्यादा उत्तेजित नहीं होगा, हम रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए, हम नहीं जानते कि उसके पास क्या है ना, उसके कितने लोग वहां हैं, उसकी क्या समस्या इसके साथ है ना, उसके पास क्या हथियार है, हमको कुछ नहीं मालूम है, तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमारा डिफेंस हो जाता है, हमारी सुरक्षा हो जाती है। दूसरी बात यह होगी कि वहां जो दूसरे लोग मौजूद हैं वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे अगर हम विनम्र प्रतिरोध कर रहे हैं तो। और यदि हम उत्तेजना के साथ प्रतिरोध करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम यह होती है कि जो बाकी जो दर्शक वहां बने हुए, मूक दर्शक बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी सद्भावना खो देते हैं। उनको यह लगता है कि यार ये कौन सा तरीका था, ये बेकार के बवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन संतुलन अपनाकर, संतुलन की नीति अपनाकर, आप कह लीजिए कि हम इस पूरे के पूरे ग्रुप को अपने साथ कर लेते हैं। और इस प्रकार अब आप देखिए कि मेरी पहली वाली बात को जोड़ दीजिए कि प्रतिरोध तो मैं अकेले कर रहा हूं लेकिन मैंने अपने अकेले की उत्तेजना को अब समूह की उत्तेजना में तब्दील कर दिया है। और जैसे ही मेरी व्यक्तिगत उत्तेजना समूह की उत्तेजना बनती है उसमें जबरदस्त ताकत आ जाती है। फिर सामने वाले को झुकना ही पड़ेगा, फिर सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाएगा, मौन धारण कर लेगा या वहां से चला जाएगा, जो भी करे वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लेगा कि अभी तक वो जो कुछ कर रहा था उसके बारे में वो शांत हो जाएगा। मित्रों, ये मैंने केवल उत्तेजना के का एक स्वरूप बताया है ना, कि जब इस तरह की उत्तेजना आए, मैं अभी सामाजिक उत्तेजना की बात कर रहा हूं, है ना, जब हम सार्वजनिक रूप से कोई अन्याय होता हुआ देखते हैं तब। देखिए, हमारी व्यक्तिगत उत्तेजनाएं भी होती हैं, व्यक्तिगत उत्तेजनाएं, दोस्त के साथ बात कर रहे हैं उत्तेजित हो जाते हैं, घर में बात कर रहे हैं किसी चीज पर उत्तेजित हो जाते हैं, छोटी सी बहस हो रही है उसमें हम उत्तेजित हो जाते हैं, कोई हमारी बात काट देता है हम उत्तेजित हो जाते हैं, कोई हमारे स्वार्थ पर चोट पहुंचा देता है हम उत्तेजित हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत स्तर पर जो उत्तेजनाएं होती हैं ये अलग तरह के सिस्टम की मांग करती हैं, राइट। इसके बारे में मैं कल बातें करूंगा और बताऊंगा कि इसके पीछे कौन सा मनोविज्ञान काम करता है। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।